अयि मित्रगणाः नमस्करोमि पुनरपि एकवारम् आरम्भं करिष्यामि रेडियो मधुबनस्य कार्यक्रमं पठामि संस्कृतम् इति शृण्वन्तु पठन्तु च पतञ्जलयोगसूत्रस्य कतिपयानि सूत्राणि। तो मित्रगण रेडियो मधुबन पर पठामि संस्कृतम् कार्यक्रम के अंतर्गत अब हम पढ़ेंगे पतञ्जलि योग सूत्र। मित्रों आज का श्लोक आरंभ करने से पहले थोड़ा सा पतञ्जलि योग सूत्रों के विषय में बता दूं। इन योग सूत्रों की रचना पतञ्जलि मुनि ने की और उन्होंने संपूर्ण योग को सूत्रबद्ध रूप से बताया है, विस्तार से नहीं समझाया है। सूत्र का अर्थ होता है कोई एक तरीका, कोई एक युक्ति जिसके माध्यम से हम दूसरी बातों को विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। और पूरे योग शास्त्र का विवेचन, योग दर्शन का विवेचन पतञ्जलि मुनि ने किया है। पतञ्जलि से शब्द बना पतञ्जल, अर्थात पतञ्जलि द्वारा रचा हुआ। और इस योग सूत्र में पतञ्जलि मुनि ने चार अध्याय बनाए हैं, जिसमें से पहले ही अध्याय का नाम है समाधिपाद, दूसरे अध्याय का नाम है साधनपाद, तीसरे अध्याय का नाम है विभूतिपाद और चौथे का नाम है कैवल्यपाद। तो पहले अध्याय समाधिपाद में उन्होंने बताया है कि समाधि को कैसे प्राप्त किया जाए, अर्थात चित्त की अति गहन एकाग्रता जो आपके अंतर्मन के अंदर पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर उसके विषय में समझाती है। लेकिन इस समाधिपाद को सूत्रबद्ध करने के बाद क्रमशः उसकी निरंतर साधना कैसे टिका करके रखी जाती है और उससे हमें विभूति दर्शन किस प्रकार होता है और अंततः कैवल्य प्राप्ति किस प्रकार होती है, इन बातों को पतञ्जलि मुनि ने ठीक ठीक समझाया है। और इसी कारण उन्होंने अपने अध्यायों के नाम समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद रखे हैं। और समाधिपाद के 39 सूत्र हम पढ़ चुके हैं, तो अब अगला 40वां सूत्र हम पढ़ेंगे। परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः। तो मुनि कहते हैं कि एक बार जब चित्त को आदत लग जाए, चित्त का अभ्यास हो जाए कि किसी बात का अवलंबन लेकर के, किसी बात का सहारा लेकर के चित्त एकाग्र हो सकता है, इस प्रकार का जब अभ्यास हो जाए तो फिर ऐसी एक सहज स्थिति आती है कि परमाणु अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म बात का भी अवलंबन लेकर के हम चित्त की एकाग्रता को पा सकते हैं। इसी प्रकार परम महत, जो परम महत तत्व है वह भी हमारे ध्यान का अवलंबन हो सकता है, अर्थात अपने ध्यान में हम उस विशाल महत तत्व का भी चिंतन कर सकते हैं। तो जब चित्त की ऐसी अवस्था हो जाती है कि हम परमाणु जैसे सूक्ष्म वस्तु पर और उसी समय उसी के साथ साथ परम महत तत्व पर भी ध्यान लगा सकते हैं, तो ऐसी अवस्था को वशीकार की संज्ञा दी गई है, अर्थात वह ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने मन को इतना अधिक वश में रख सकता है कि वह छोटी से छोटी वस्तु पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है और एक विस्तृत महत तत्व को भी अपने ध्यान में समाहित कर लेता है, अर्थात उसका ध्यान उस महत तत्व से भी अधिक विशाल हो जाता है या दूसरी तरफ एक परमाणु से भी छोटा हो जाता है। तो जब हमारा चित्त इस प्रकार दोनों छोरों पर एकाग्र किया जा सकता है तब इस अवस्था का नाम है वशीकारः। अगला सूत्र कहते हैं क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर ग्रहीतृग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदंजनता समापत्ति ही। एक बहुत सुंदर यहाँ पर उदाहरण देकर के समझाया है कि क्षीण वृत्तेर अभिजातस्य एव, कि जब चित्त की वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं अर्थात वो इधर उधर नहीं भटकती हैं, तब ऐसा चित्त ग्रहणशील हो जाता है। और वह इतना ग्रहणशील हो जाता है कि ग्रहण करने वाली इंद्रियां, ग्रहण करने का विषय, ग्राह्य विषय और उन विषयों को समझने वाला चित्त या पुरुष जिसे ग्रहीतृ कहा गया है, इन तीनों की एकतानता, एक तन्मयता हो जाती है, एक रूपता हो जाती है, इसे समापत्ति ही कहा जाता है। और ये एक रूपता कैसे होती है, तो उदाहरण देते हैं कि जब कोई स्फटिक का मणि जो अत्यंत पारदर्शी होता है उसके सम्मुख किसी वस्तु को रख दिया जाए तो वह वस्तु उस मणि में इस प्रकार प्रतिबिंबित होती है कि हमें मणि की जगह उसी वस्तु का आभास होता है। इस प्रकार मणि जो ग्रहण करने वाला है वह उस वस्तु को अपने आप में इस तरह से ग्रहण करता है कि हमें दोनों का अस्तित्व एक ही लगने लगता है। और यहाँ एक शब्द आया है तत्स्थ तदंजनता। तत्स्थ अर्थात वहीं रहने वाला, और तदंजनता अर्थात तदंजनता उसी के सारूप्य हो जाना। ऐसी जब चित्त की स्थिति होती है तब उसे समापत्ति कहते हैं। अर्थात चित्त अगर परमाणु के साथ एकात्म हो जाए तो परमाणु जितना छोटा हो जाता है, और अगर चित्त महत के साथ एकात्म हो जाए तो उस महत इतना विशाल हो जाता है। इसी अवस्था के लिए मराठी के संत तुकाराम ने कहा है कि मैं कभी कभी अणु से भी छोटा हो जाता हूँ और कभी कभी आकाश से भी बड़ा हो जाता हूँ। तो ये अवस्था कब होती है, जब उन्हें समाधि की वह अवस्था प्राप्त हो जहाँ पर अन्य सारी वृत्तियाँ क्षीण हो करके उनका चित्त परमाणु से भी एकात्म हो सकता है और महत से भी एकात्म हो सकता है। तो ऐसी अवस्था हो जाने के बाद फिर वह साधक क्या करता है। अगला सूत्र कहते हैं तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैहि संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। अब समापत्ति के विषय में थोड़ा और अधिक व्याख्या की है। चित्त के ग्राह्याकार में शब्द आ जाता है, अर्थात चित्त जब शब्द की भावना पर एकाग्र होता है तब वह शब्द, शब्द का अर्थ और उस अर्थ से निकलने वाला ज्ञान, ये सारा का सारा एकात्म हो जाता है और इसे सवितर्का समापत्ति कहा जाता है। तो 35वें सूत्र में कहा था कि विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। तो वहाँ पर विषयवती प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है। इसका विवेचन बताने वालों ने विवेचन किया है कि गहन समाधि में नासिका पर ध्यान केंद्रित हो जाता है तब साधक को एक दिव्य गंध की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जिह्वाग्र पर रस की अनुभूति होती है, तालु पर रूप की अनुभूति होती है, जिह्वा के मध्य में स्पर्श की अनुभूति होती है, और जहाँ जिह्वा मूल है वहाँ पर शब्द की अनुभूति होती है। इस अनुभूति को ही तन्मात्रा भी कहा जाता है। उसी में से शब्द की अनुभूति का उल्लेख यहाँ किया गया है कि जब शब्द की अनुभूति होती है तो उसके साथ साथ उसका अर्थ और उस अर्थ में निहित ज्ञान, तीनों की अनुभूति साथ साथ होती है, और इसीलिए इसे सवितरका समापत्ति कहा गया है। तो इस विवेचन से हमें समझ में आता है कि अक्षरों में मंत्र की शक्ति कहाँ से आती होगी या कैसे आती है, उसका थोड़ा सा अनुमान हम इस सूत्र से लगा सकते हैं। तो मित्रों, आज हम यहाँ रुकेंगे। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, सुनते रहो पठामी संस्कृतम, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।